الشام حتشوفها سهم من سهام ابن يوسف مسموم. کہ نظر بازی جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور وہ بھی زہر میں بجھا ہوا. لہٰذا پہلے زمانہ میں جو جنگیں ہوتی تھی اس میں زہر والے تیر استعمال ہوتے تھے. اچھا اس تیر کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ادھر بازو پہ بھی لگ گیا نا تو وہ بازو پہ لگنے کے نتیجے میں اس کا جو زہر ہے وہ خون میں جاتا تھا, جس سے اس کے پورے جسم میں ایسی آگ لگتی تھی, ایسا لگتا تھا جسم کو کسی نے جلا دیا ہو, یہ ہوتا تھا. اچھا بدنظری کرنے والے سے کیا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ بدنظری شیطان کے تیر ہے, آنکھ سے دیکھتا ہے, اب دماغ اسکیمیں بناتا ہے کہ یار میں اس کو کیسے حاصل کروں, کان جو ہے اس کی باتیں سننا چاہتا ہے, زبان جو ہے اس سے باتیں کرنا چاہتی ہے, اور ہونٹ اس کا چما لینا چاہتے ہیں, ناک سونگھنا چاہتے ہیں, ہاتھ سے اس کو پکڑنا چاہتا ہے, جسم کو اس سے ٹچ کرنا چاہتا ہے, اسی طرح پورا جسم اس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں من ترکہا مخافتی, جو میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا, میرے خوف سے نظر بچائے گا, دوستوں کے خوف سے نہیں. انہوں نے کہا جی مرید ساتھ میں جو نظر بچا لو, مرید کہے گا لو کتنا حرامی پی رہے, یہ جو ہے وہ دیندار دوست ہیں کہیں گے یار یہ اچھا ہے ابھی چلا لگا کر آئے ہو اور ابھی ایسی حرکتیں کر رہے ہو, یہ کیا حرکت ہے. تو ایسا نہیں, اللہ کے خوف سے ہو. لہٰذا اللہ کے خوف کی علامت ایسے پتا چلے گی کہ یہ شخص تنہائی میں بھی ہوگا, واللہ ایسا باخدا ہوگا جیسے لوگوں میں بیٹھا ہے, یہ تنہائی میں بھی کوئی حرکت نہیں کرے گا, یہ اس کے باخدا ہونے کی علامت ہے اور خوف خدا ہونے کی علامت. تو کیا ملے گا اس کو انعام, یجد حلاب من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا, ایسا ایمان میں اس کو عطا کروں گا, یجد حلاوتہ فی قلبی, جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں موجود پائے گا. یہ ہے بد نظری سے بچنے والے کا انعام. اور حلاوت ایمانی کے بارے میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حلاوت ایمانی کے بارے میں آتا ہے کہ ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا, جب حلاوت ایمانی ایک مرتبہ دل میں داخل ہو جاتی ہے تو لا یخرج لا تخرج منہ ابدا, پھر ساری زندگی کبھی نکلتی نہیں ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ففیہ اشارت الى بشارت حسن خاتمہ, یہ اس میں اس بشارت کا اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ حسین ہو. نظر اس سے یہ پتا چلا کہ جو آدمی نظر بچاتا ہے تو اس کو خاتمہ ایمان پر ملتا ہے. اب اس کو الٹا کریں, ہر چیز اپنے دل سے متعلق ہوتی ہے نا, تو جو نظر نہیں بچائے گا اس کا خاتمہ خطرے میں پڑ جائے گا. اب آپ بتائیے ایسے واقعات ہیں. علامہ جوزی نے لکھا, وہ جو شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ کی جو آپ بیتی ہے اس میں بھی انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. آپ اس واقعے کو پڑھیں, اب آپ بیتی کے اندر ہے کہ وہ شیخ اتنے بڑے شیخ تھے کہ ہزاروں مدارس, سینکڑوں مدارس, سینکڑوں خانقاہیں, سینکڑوں مرید, سینکڑوں شاگرد حضرت کے تھے, لیکن صرف کیا وہ جو نظر کی وجہ سے ان پر ایک پکڑ آئی تھی, اس پکڑ کے نتیجے میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ دوبارہ ایمان عطا فرمایا تھا. اور ایک واقعہ اور بھی لکھا, بہت واقعے ہیں. علامہ جوزی نے ایک واقعہ اور لکھا کہ ایک صالح مؤذن تھا بغداد کے اندر, تو وہ مؤذن جو ہے وہ مسجد میں اذان دینے کے لیے چڑھا, پہلے میناروں پر اذان ہوتی تھی نا, اب اس نے اذان کے لیے چڑھا تو پڑوس میں ایک عیسائی لڑکی تھی اس پر اس کی نظر پڑی. اب وہ نظر پڑی تو اذان دینے تھا, وہ نیچے اتر آیا, نیچے اتر کر سیدھا اس کے پاس گیا اور دروازہ کھڑ گیا, جیسے دروازہ کھلا اس سے لپٹ گیا اس لڑکی سے. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, اس نے کہا بس میں تیرے عشق میں پاگل دیوانہ ہوں, اور یہی ہوتا ہے لپٹ. کتنے لوگ ہیں وہ ایسی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب اتنے برس کے پرانے دیندار اور اتنے برس کے پرانے جو ہے وہ کام کرنے والے, لیکن یہ کیا حرکت کر ڈالی. اچھا وہ لپٹ گیا, پوچھا کیا بات ہے, کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا تیرا مذہب کچھ اور میرا مذہب کچھ اور, یہ کیسے ہو سکتی ہے شادی. اس نے کہا میں برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں. فوراً کافر ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا اچھا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں تو شراب اور خنزیر کا گوشت, کہا اللہ شراب بھی لائی وہ بھی پیا, خنزیر کا گوشت بھی کھایا. اب اس لڑکی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتی, میرے ماں باپ جو ہے, میرا باپ ہے, وہ جو کہے گا میں تو وہی کروں گی. اسے کہا اچھا کیا کروں, کہا اوپر چھت پر چلے گا. علامہ جوزی رحمت اللہ لکھا ہے کہ وہ شخص چھت پر جا رہا تھا, اس کا پیر پھسلا, پیر پھسل کر گرا, اسی وقت وہ مر گیا. اب آپ بتائیے کیا موت ہے, ہے نا خاتمہ ایمان پر ملا اس کو, گیا نا خاتمہ. تو اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں یہ بدنظری ایسی خطرناک چیز ہے, ایسی خطرناک خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. یہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کسی کرسچن فلپینو لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے اور نام لینے کو ان کو مسلمان بھی بنا دی, बहुत हुआ कि जी बात मामला था, लेकिन पता ये चला कि वो दिल से मुसलमान ही है। फिर बच्चे पैदा हुए, पहली बात हुई बच्चे पैदा हुए, बच्चों को लेकर भाग भी गई और वो बच्चों को सारे क्रिश्चियन बना दिया। और फिर सारा वो खेल तो इस्लाम का तो खेल था ही नहीं ना, वो तो सारा तो इश्कबाजी का खेल था। कितने ऐसे वाकयात आए। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने कि मंत्र कहा मखाफती, जो मेरे खौफ से नजर को बचाएगा ऐसा ईमान दूंगा कि जिसकी हलावत वो अपने दिल में महसूस करेगा। और यही वो चीज है जो इंसान को मस्त रखती है। लिहाजा इसलिए एक साहब ने मेरे मुर्शिद से कहा, हजरत इन हसीनों ने बड़ा नाक में दम करके रखा, हसीनों ने नाक में दम करके रखा है। तो मेरे मुर्शिद ने क्या फरमाया, फरमाया हसीनों ने तुम्हारी नाक में दम किया नहीं किया, बल्कि तुमने इनकी दुम में नाक लगाई है। क्यों देखते हो भाई? अच्छा अब रही बात शॉपिंग का मसला। मैं भी बाजार जाता हूं, मेरा भी है। उसके लिए मेरे पास दो टाइम होते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग जाता हूं या लेट आवर्स में जाता हूं, या बीच में भी कभी ऐसे होते हैं ना दोपहर का जैसे वक्त है उस वक्त बाजार खाली होते हैं, अक्सर थोड़े बहुत होते हैं। तो इंसान अपनी टाइमिंग नहीं बदल सकता क्या? बात ये काम करना है, बात ये कि हमें तकवा से रहना है। देखिए ना कितनी मरतबा है इंसान किसी रूट सुने, पहले मेरी बात आगे सब बातों में इंशाल्लाह जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात समझे। देखिए ना इंसान है शारजा के लिए जाता है, क्या कहते हैं जी किसी जगह जा रहा है जी फना रोड पर इस वक्त रश होगा, चलो यार उस रास्ते जाओ। यार वो तो बहुत लंबा रास्ता है। कि यार रास्ता तो लंबा है लेकिन टाइम तो हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? तो बात यह है कि जब इंसान दुनिया के कामों के लिए थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करता है तो आखिरत के काम के लिए क्या तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता? देखिए ना अभी चार महीने के लिए कोई आसान काम है, अपनी बीवी से छुट्टी लेना, अपने जो है वो दफ्तर, अपने आराम, अपने आयश, अपनी राहत, कितनी चीजें छोड़नी पड़ती है। क्यों? कोई एक चीज आखिर नजर आ रही है ना। तो मेरे दोस्तों उसी तरह से नजर बचाने में दिल को तकलीफ तो है, लेकिन सोचे उस तकलीफ से मिलेगा क्या? उस तकलीफ का नाम अल्लाह ताला ने अपनी जात रखी है। और यही वो चीज है जिसकी वजह से बड़े बड़े दीनदार भी अल्लाह इबादत करके भी अल्लाह ताला के कुर्ब से महरूम है, बावजूद इबादत करके, सिर्फ इस वजह से कि इस गुनाह में मुबतला है, बदनजरी के गुनाह में। ऐसा अपने टाइमिंग बदल, और फिर जो चीज इख्तियार में है वो तो काम कर सकता ना। जैसे रिसेप्शनिस्ट रखना तो अपने इख्तियार में, सेक्रेटरी रखना तो अपने इख्तियार में, वो तो कोई नहीं बोल सकता ना कि तुम रखना लाजमी और जरूरी है, वो तो कर सकते हैं। हाँ बाजार अपने इख्तियार में नहीं है, लेकिन वहां पर जाना टाइमिंग बदलना वो तो अपने इख्तियार में है कि नहीं है? टाइमिंग बदल दे। या कितने ऐसे बाजार होंगे जहां पर औरतें नहीं भी होंगी, कम भी होंगी, दादा वहां चले जाए। जरूरी है कि सेंटर पॉइंट जाना और वही सेंटर में घुसना, उसी पॉइंट के सेंटर में घुसना, क्या वो जरूरी है क्या दादा? उसको टाइम बदल दे। और फिर यही नहीं, देखो ना हम अपने काम के लिए जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है उनके लिए तो और आसानी है। वो आसानी है कि अपने कामों के लिए मोबाइल चाहिए, यार मुझे मोबाइल ऑफिस भिजवा दो, फोन क्या रख दिया। अच्छा क्या चाहिए फला चीज, कहा लो भाई अपने मुलाजिम है उनको कहा ये जाओ ये ले जाओ। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, देखो दीन की बरकत है, अल्लाह ताला शुक्र है मेरी घरवाली मुझसे कोई चीज मांगती है ना, मुझे क्या चीज चाहिए कहाँ से चाहिए ये पूछता हूँ, क्या चीज चाहिए कहाँ से चाहिए और कौन सी क्वालिटी की चाहिए, वो मुझे बताती है ये चीज चाहिए फला जगह से चाहिए फला क्वालिटी की चाहिए, बस ठीक है। कहा कि कैसे मंगाया, तो भाई मैंने कहा ये मेरा काम है। अब अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने दीन की बरकत है दोस्त दिए, यार फला चीज आई फला जगह से, जितने उसके डिजाइन है सब ले आओ, जितने कलर है वो पता करके बता दो। अच्छा गया वो घर में वो चीज आ गई, क्या चाहिए ये कलर नहीं इसमें और कौन कौन से कलर है, यार कलर लेकर आ जाओ, अब इस चीज में कलर लेकर आ जाओ। जब ऐसे मौजूद है तो क्या, जब अल्लाह जब खुदा दे बैठ कर खाने को, जब खुदा दे बैठ कर खाने को भला दे जाए कमाने को। तो बात ही क्या है, इंसान कितने कामों में करता है कि नहीं करता, यार तुम वहां जाकर देख लो कर लो, क्या जरूरी हो जाना दूसरों से काम करवाए, हर काम है वो हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात, सबसे जो बड़ी चीज है ना वो चीज ये है कि असल में हमारे अंदर अभी मखलूक को फेस करने की हिम्मत नहीं है, असल में यहां मार खा जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये क्या लोग क्या बोलेंगे, फला क्या बोलेगा, और गुनाह का तकाजा होगा तब हम क्या करेंगे। इसी चीज की जो ये जो चीज है ना, देखिए पहलवानी सीखने का एक तरीका तो ये है कि आप हल्क होगन की कुश्ती देखें, अंडरटेकर की कुश्ती देखें, नंबर एक। और दूसरा काम ये करें कि खूब बॉडी बिल्डिंग क्लब में जाएं और अपने आप को शीशे में खड़े होकर यूं करें, अपने आप को शीशे में खड़े होकर यूं करें।
जिंदगी में पहली दफा सुना होगा ना उन्हें, बट सारे बॉडी बिल्डर अपने आप को क्या कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते अब बताइए वैसे और क्या कर रहे होते, मैं सही कह रहा हूँ नहीं कर रहा। अब शीशे में खड़े दूसरा तरीका है, यानी आप एक्सरसाइजेस करें, दूसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा काम ये हुआ आपने सप्लीमेंट और दूध बादाम और ये सब चीजें खाई ताकि ताकत आ जाए, ये काम हो गया। लेकिन ये शख्स अब भी अखाड़े में नहीं उतर सकता, रिंग में अब भी नहीं जा सकता, क्यों? रिंग में चला जाएगा, मान लो इसने अपना लिया रिंग में चला गया, लेकिन ये पहलवान से अब भी कुश्ती नहीं लड़ सकता, क्यों? क्योंकि जब पहलवान पहलवान से मुलाकात होती है ना, तो क्या होता है वो जो पहलवान होता है ऐसे करता है, झपकी देता है, तो उस वक्त पता चलेगा दिल का क्या हाल है। हाँ, सिर्फ दूध बादाम कुश्ती को फन देख लेना और जो है एक्सरसाइजेस कर लेना ये काफी नहीं है, असल तो चीज होती है पहलवान की मार को बर्दाश्त करना, पहलवान की झपकी को बर्दाश्त करना, ये असल चीज होती है। लगा एक पहलवान गुजरी औरत थी हमीदा पहलवान के नाम से, ये आज से तकरीबन 60-70 साल पुरानी बात है। वो क्या करती थी, बड़े बड़े मर्दों को मार देती थी, क्या उसका दाव क्या था, वो आती थी झपकी देकर मर्द की टांगों के दरमियान मार देती थी, अब सब पकड़ के बैठ जाते थे, इसी में वो सब कुछ चित कर देती थी। वो हमीदा पहलवान के नाम से थी, या बाप दादाओं से पूछना है वो शायद जानते होंगे, ये 60-70 साल पुरानी बात है, ऐसी थी, ऐसा करती थी। तो बात क्या है कि असल चीज ये नहीं है कि आपने दूध पी लिया और आपने जो है वो डन बैठक कर ली और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को वो दिखा दिया और जो है वो फन सीख लिया, नहीं, असल जो पहलवानी की जो बुनियाद और रूह है ना वो ये कि पहलवान की मार को बर्दाश्त करना। लिहाजा आप देखिए मोहम्मद अली के लिए कितना मशहूर है, इसकी खसूसियत थी, खसूसियत थी कि 8-9 राउंड तक अपने जो मुकाबिल होता था ना जो बॉक्सर उसको पिद्दी कराता था, वो आगे आगे वो पीछे पीछे, वो कुछ नहीं मारता हुआ तो बॉक्सिंग नहीं करता था, फिर 9वें राउंड में 10वें राउंड में 11वें राउंड में अब देखा वो खूब थक गया, अब उसके बाद वो फिर पंचिंग शुरू करता था और एक ही राउंड में अक्सर वो नॉकआउट कर देता था, है ना, ये उसकी कुश्ती की खास चीज मशहूर थी। क्यों? तो पता ये चला कि अपने मुकाबिल के जो हमले हैं उसको बर्दाश्त करना ये कमाल चीज है। लिहाजा वो पहलवान इस तरह पहलवानी सीखे और एक पहलवान वो है वो किसी पहलवान के अखाड़े में चला जाए। अब पहलवान क्या करता है, उसको दूध बादाम नहीं खिलाता, एक्सरसाइज नहीं करा रहा, वो सब क्या काम करता है, ये घूसा मारा, ये लात मारी, वो लड़के वहां चला गया, वो मार खाने वाला, वल्लाह ये मार खाने वाला बड़ा पहलवान निकलेगा उस दूध बादाम वाले से, क्यों? क्योंकि इसने पहलवान से ट्रेनिंग हासिल की है। तो असल जो चीज है कि ये इबादत हम कर रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, माल भी अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं, तबलीग में वक्त भी लगा रहे हैं और हज उमरा भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आलम क्या होता है कि गुनाह का मौका आया बस हथियार डाल दिए, जरा बीवी ने कुछ कहा बस गालियां बकना शुरू कर दी, माँ बाप ने कुछ कहा हम उसको फेस नहीं कर सके। क्या बात है कि भाई जब इतनी चीजें हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत भी है, तबलीग में भी जा रहे हैं, हज उमरा भी हो रहा है, माल भी खर्च कर रहा है, फिर ये क्या बात है कि बुजुर्गों के पैर भी दबा रहे हैं और उनका भरम भी रख रहे हैं लेकिन जहां गुनाह का तकाजा हुआ फौरन हथियार डाल दिए, क्यों? तो पता चला एक चीज की कमी है और जो वो जो जिस चीज की कमी है ये अल्लाह ताला ने अपने औलिया की सोहबतों में रखी, ये बगैर सोहबत की ये चीज नहीं मिलती। ये जो चीज है ना वो जो नफ्स के तकाजे को बर्दाश्त करना, नफ्स के तकाजा करता ना यार इस औरत को देख लो देख लो देख लो यार कोई नहीं देख रहा यार ऐसा मॉडल तो यार हमने ऐसा पीस तो देखा ही नहीं, ऐसी चड्डी ऐसी बनियान यार ऐसा वाह वाह फला फला फिगर्स एंड दैट एंड दिस एंड दैट कई चीजें है ना वो नोट करता है यार क्या यार स्टाइल है, तो वो उस वक्त जो तकाजा होता है उस तकाजे को बर्दाश्त करना ये अल्लाह ताला ने अपने औलिया की सोहबत में रखा है। लिहाजा वो चीज की कमी है हमारे पास, उस चीज की क्या कहते हैं कमी है हमारी, उस चीज की जरूरत है, दादा वो चीज मिलेगी सोहबत अहलुल्लाह से, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जरा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ थोड़ी सी देखो ना गुनाह है, अब आपको तकाजा होगा, अब देखिए ना अच्छे अखलाक है, अब हमें आलम जो होता है कितने लोग डांट देते हैं, तो बोला अब मुझे बोलो ऐसे कैसे, मुझे कैसे ऐसे बोला, अब आप देखिए जरा जरा सी बात ऐसी बेवकूफी की बात पर लड़ाई होती है कि इंसान खुद बाद में पता है तो बुद्धू बना किया मैंने, उसने तो कोई ऐसी बात बोली नहीं थी, लेकिन क्या हमारी अना को ठेस पहुंचती है ना, कभी माल की वजह से, कभी हमारी दीनदारी की वजह से, कि मैं इतना दीनदार हूं और जनाब इसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया और एक ऐसा आदमी था तो इसने ऐसे बोला, तो नतीजा क्या होता है गुस्से में पागल तकब्बुर का मरज और जनाब जो गुनाह की शहवत का हुआ वहां पर ढह गए, क्योंकि अकेले बैठे हैं, अब नफ्स ने कहा यार जरा इंटरनेट तो दिखाओ, जरा फिल्म तो दिखाओ, जरा पिक्चर तो दिखाओ, अब वो फौरन हथियार डाल दिए, तो उस वक्त जरूरत है सोहबत की। तो उसको करे फिर इंशाल्लाह देखिए सोबत थोड़ी उठाए, पहलवान की मार ज्यादा खा ले, बादाम थोड़ा भी कर ले, इंशाल्लाह पहलवान से कुश्ती हो जाएगी। नवाबिल चाहे कम कर ले, नवाबिल चाहे कम कर ले, फराइज वाजिबात सुन्नत मौकता से इतनी ताकत मिलेगी कि बस। जैसे एक आदमी दूध मक्खन और मुर्गे और बकरे सब खाता है लेकिन जहर भी खाता है कि जनाब सिगरेट है, जीएम है, 1100 है, 2100 है, पान पराग है, गुटका है, पता नहीं क्या क्या चीजें लगाई ना, और शीशा, ये सारे नाम पता है मैंने कैसे आती है। एक साहब मेरे पास आए, वो मुझे आकर बताने लगे जीएम 1100, उसने नाम लिए, मैंने याद कर लिए सारे, उसी वक्त याद किए जीएम 1100 2100 पता नहीं, और बहुत सारे उसने नाम लिए थे जो भूल गया। और वो रोजाना, वो शख्स जो है रोजाना 500 रुपए की खाता था, रोजाना 500 रुपए। मैंने उसी को हिसाब लगाया कि 500 10 दिन में 5000 और एक महीने में 15000 की सर्दी खा रहे सारे, और अच्छा वाला जिंदा आदमी। लेकिन नतीजा ये क्या है कि फजूल चीजें, तो मैं अरज नहीं कर रहा था क्योंकि सूप वगैरह सब ताकत की चीजें खाए, लेकिन ये जहर खाए, सेहत मिलेगी उसकी? कभी नहीं बनेगी। हाँ, एक आदमी चटनी रोटी खाए, इन सब चीजों से बचे, वल्लाह इसकी सेहत अच्छी होगी। हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह को कानपुर के अंदर एक शख्स ने देखा, उसने ख्वाजा साहब से कहा कि तुम अपने पीर से पूछो ये कौन सा कुश्ता खाते हैं, इतने लाल लाल और ऐसे जबरदस्त हो रहे हैं। तो हजरत से आकर कह दिया, ख्वाजा साहब ने कि हजरत एक शख्स ने कहा है कि पीर से पूछ के बताओ कौन सी बूटी खाते हैं और कह रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया वो साहिल भी बड़ा खपती मालूम होता है, बेवकूफ ये भी कोई बात है? फिर हजरत फरमाया हाँ, अब ख्वाजा साहब अगर मिले तो उसको जाकर कहना कि अशरफ अली एक बूटी खाता है, उस बूटी का नाम है ताल्लुक माल्लाह, हर वक्त अल्लाह की याद में बाखुदा रहना, और एक लम्हा एक साथ अपने मालिक को नाराज न करना। देखो मुस्बत इबादत तो सब है ना, सब करने में लगे, इबादत है, हज उमरा भी है, नफिल भी है, और माल भी खर्च कर रहे हैं, सैलाब सदगाना है, कितना माल खर्च किया लोगों ने, सब है। लेकिन जहाँ गुनाह से बचने की आप दाता है, ये सब है। अब हज करके आए, उमरा करके आए, एरोस से पूछा हज क्या हुआ, ठंडा या गर्म? ठंडा भी गर्म भी, गर्म आप करते ठंडे हम खुद हो जाएंगे। तो गर्म आप करते ठंडे तो हम खुद हो जाएंगे। अब उसको देख भी रहे और देख कर भी कह रहे हैं वो साथ साथ हराम लजे भी ले। एक खान साहब गए ना जहाज में, खान साहब गए जहाज में, अब जहाज में वो ऐसी पहली दफा था तो हाथ बात लगा, तो इतने में हॉस्टेस आ गई, उसने पूछा खान साहब जी फरमाइए जी खाइए खान साहब क्या बात है? खान साहब आपने बुलाया? खोचा हमने नहीं बुलाया। नहीं आपने बुलाया, कैसे बुलाया? ये बटन दबाए, ये बटन हमने नहीं दबाया, बताया। अच्छा, तो इस बटन को दबाने से क्या होता है? हम आ जाते। कहा इस बटन को दबाने से तुम आ जाते हैं? हम आ जाते हैं, अगर ये बटन हम अपने घर में लगवा ले। पूछने वाला तो चलेगा, बहरहाल जो है अल्लाह ताला अपना करम। तो प्लस देखिए ना, ये जितने क्या नाम है इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस माइनस दोनों वायरिंग होती है कि नहीं होती? दोनों में, तब उसके बाद बिजली ट्यूबलाइट चलती है, प्लस भी माइनस भी। उसी तरह से अल्लाह ताला की मोहब्बत और दोस्ती के लिए जाए, इबादत करे, जिक्र करे, अल्लाह वालों के पास भी जाए और तबलीग में भी वक्त लगाए, हज उमरा माल भी खर्च करे, लेकिन साथ साथ गुनाह से बचने का एहतमाम भी करे। लेकिन गुनाह से नहीं बचा तो फिर वो चीज और नस्बत वो मुंतकिल नहीं हो सकेगी, बल्कि होगा ये कि मेहनत भी जाया चली जाएगी, ऐसा होगा। ये गुनाह करके जो है वो जो इबादत के अनवारात है वो अनवारात जाया हो जाते, क्योंकि जो मुल्तजम पर रोजे मुबारक पर इंसान हज को जाता है, अपना पैसा लगाता है, मेहनत होती है, तकलीफ लाख कितना ही लग्जरी पैकेज हो, तकलीफ होती है कि नहीं होती? कितना ही ऑफर करने वाले हो फिर भी तकलीफ होती है। लाख उसको सोफा कम बेड दे दो मीना के अंदर, लाख सब कुछ दे दो, शानदार गाड़ी सब कुछ हो, तकलीफ फिर भी होती है? राहत तवाफी में पता चल जाता है क्या हाल गुजर रहा है उस पर। तकलीफ तो तकलीफ है, लेकिन इतनी तकलीफ की, लेकिन आलम यह है कि वहां तवाफ की हालत में वहां पर नजरी हो रही होती है, हालत है तवाफ में। एक सामने मेरे मुर्शिद से कहा काबे शरीफ में बैठकर, हालत इनको देखी, ये इंडोनेशियन औरतों को देखी, व्हाइट कलर का लिबास, खुद भी भुतरी मालूम हो रही है, इनके चेहरे पर कितना नूर है। हजरत से कहा हजरत देखिए इनके चेहरे पर कितना नूर है, जालिम खुद भी देखता है मुल्ला को भी दिखाता है। हजरत फरमाया कि तुम यार बताओ, जो तुम अपने घर से पैसा खर्च करके अपने बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर आयो, इतनी मेहनत करके आयो, चाहे इनका नूर देखने आयो या काबे शरीफ का नूर देखने आयो? और उसका नूर बना दिया, औरतों का सारा नूर नजर आ रहा है और जवानों पे बुढ़ों पे नूर किसी को नजर नहीं आता। बुढ़े के मोबाइल में कोई बैलेंस ट्रांसफर करे, और मुड्ढे को कोई मुद्दे हमने ना अब जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, पहले शरीर आ गया वहां पर, अब वहां नौजवान लड़की चड्डी पहने खड़ी है, अब गाड़ी रोक ली, अब उसको ऑफर की जा रही, और अब वही कोई बुढ़ी खड़ी हो चड्डी पहनकर वहां पर, 60 वर्ष की बुढ़ी है जिसके मुंह में दांत नहीं है और चेहरे पे झुर्रियां है, जरा उसको इशारा करके कहे तो हम देखेंगे कि बड़ा कमाल करता है, आप वहां पर जरा वेलकम करें ना, उसको कोई इशारा नहीं करेगा क्योंकि नफ़्स ही नहीं मारेगा उसको तो, और जवान को तो जा रहे सुपर मार्केट में फिलिपिनो को सब जो है वो हंस हंस के उसको चिप्स खोलकर ऑफर भी कर रहे हैं, इज ठीक प्लीज ओके शिट, वहां तो उसको तो जवान को तो सब पूछ रहे ना, हमारा रूमी फरमाते हैं हर चीज की जवानी कहती है बिया बिया आओ आओ मेरे पास आओ, लेकिन फरमाते हैं बुढ़ापा कहता है रो रो अब मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ जाओ अब हमसे कुछ नहीं मिलेगा, कमर झुके मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, उनके बालों पे गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, जिनका नक्शा था कल जवानी का है लकब आई नाना नानी का, कैसा देखा था हो गए कैसे, क्या भरोसा है जवानी का, है ना, वही लड़के जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती उनको देखकर सब आंखें मार रहे होते हैं, मोबाइल भी दिला रहे हैं, मोबाइल में बैलेंस भी डाल के दे रहे हैं, चिकन कढ़ाइयां खिला रहे हैं, दूध पत्ती चाय है, क्या बढ़िया वो भगत हो रही है, और जब उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई अब कोई पूछ ही नहीं रहा। मेरे मुर्शिद ने खुद फरमाया कि शेख हदीस वहां सकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मक्की मस्जिद में 70 के जमाने में तशरीफ लाए थे, फरमाया लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और सब लोग हजरत से चूंकि मुसाफा हो रहा था तो सब लाइन में, फरमाते मेरे शेख मैं भी खड़ा था, फरमाया मैं ऐसी नजर की देखा एक बुड्ढे को, वहां पे एक शामी लड़का था, शामी हुस्न मशहूर है ना, एक लड़का था वो लोग शेख उल हदीस साहब से दुआ करें और वो लड़के को कह रहे मेरे लिए दुआ करना, ये हालत था, ऐसा नफ बदमाश है जी, क्या जी ये नौजवान है बड़ा नेक है, भाई बुढ़ा जो इतना पुराना नेक है उसकी नेकी नजर नहीं आ रही, ये नफ्स की अजीब बदमाशी है, इसी तरीके से हमको बर्बाद करता है कि अल्लाह की पनाह, इसी तरीके से करता है कि बस तौबा तौबा, लेट सेटिंग ऑफिस में कर रहे हैं कि जी सर आज बहुत जरूरी है आप चले जाएं मैं जरा लेट सेटिंग करूंगा, पता चला फिर फिल्में डाउनलोड में लगे हुए ये इम्पोर्टेंट वर्क हो रहा है और फिल्में देख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट वर्क है, बीवी को भी फोन करके ना आज मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, पता चला कि वो डेट खाकर डेट पर गए और अपनी डेट खराब कर रहे हैं, हाँ नहीं वो मैंने कहा बात चल रही थी ना, मैंने कहा यानी नफ्स ऐसे करता है अभी कि अभी अभी
इनको मैंने बोला कि रिसेप्शनिस्ट नहीं मिला,
एक बात सुना सवाल पैदा होता है कि यहाँ का मालिक और मुख्तार कौन है, मुझे इसका जवाब दे, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कयामत के दिन उनसे सवाल होगा आपसे होगा,
इधर रिसेप्शनिस्ट
पहले ये बात सोचो, ये नहीं देखो बस ये सोचो, सबसे पहले इस चीज को याद रखो, याद रखना कि अगर हमने खुद अपनी जन्नत बनाने की फिक्र नहीं की, अगर हम मखलूक से ये उम्मीद रखे कि वो हमारी जन्नत बनाएगी और हमें जहन्नम से बचाएगी जबकि हम खुद जहन्नम में घुसना चाह रहे हैं तो फिर हमें कोई बचा नहीं सकता, याद रख एक बात फरमाई, एक बार मुल्ला लिखाई रहमतुल्लाह ने एक अजीब बात फरमाई, फरमाते हैं कि मन हब्बत दुनिया, कि जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, और दुनिया उस चीज का नाम, दुनिया का नाम ये मकान गाड़ी नहीं है बल्कि दुनिया हर उस चीज को कहते हैं जो हमें अल्लाह ताला से गाफिल करते हैं, उसका नाम दुनिया है, अगर हलाल नेमत भी अगर हमें अल्लाह से गाफिल करते तो वो दुनिया है, तो फरमाते हैं मन हब्बत दुनिया ला यकदिरु अला हिदायतिही जमीउल मुर्शिदीना, कि अगर सारी दुनिया के औलिया अल्लाह मिलकर चाहे कि मैं इसको हिदायत दे दूं जबकि ये दुनिया से मोहब्बत रखता है तो ला यकदिरु वो कुदरत नहीं रखते, और एक बात फरमाई मन तरकत दुनिया जिसने दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दी तो ला यकदिरु अला जलालतिही जमीउल मुर्शिदीना, सारे दुनिया के मुफसिद फसाद पैदा करने वाले सारे दुनिया की गुमराहकुन एजेंसियां नंगी फिल्में नंगी औरतें और सारी माल और दौलत बादशाह भी चाहे कि मैं इसको गुमराह कर दूं, वल्लाह जो दुनिया को अपने दिल से निकाल दे वो गुमराह नहीं हो सकता, हाँ ये जरूर है एक बात और मैं आपको बता दूं कि औलिया अल्लाह के यहाँ एक क्या एक वो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहि सलाम तो मासूम होते थे लेकिन औलिया के लिए मासूम का अकीदा रखना ये जायज नहीं है, वो क्या उनसे भी वो भी फिसल सकते हैं, वो भी बशर हैं, फिसल सकते हैं, बदनजरी हो सकती है, कोई गुनाह उनसे भी हो सकता है, लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं अगर उनसे कभी गुनाह होगा तो फिर उसके बाद जो उनकी तौबा होगी वो भी उसी दर्जे की होगी। क्या आलम होगा, फौरन सजदे में गिरकर अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, न सिर्फ खुद रोएंगे बल्कि जमीन को भी रुलाएंगे और आसमान को भी रुलाएंगे। मारूमी ऐसे ही नहीं फरमाते, फरमाते मन गर्भ गिरियम, जब मैं रोता हूँ अल्लाह की याद में ऐसा रोता हूँ कि गर्भ गिरियम चल खा गिरिया शबन, तो आसमान भी मेरे साथ होता है और गर्भ नालम, और जिस वक्त मैं अल्लाह के वजू में आहो नाला करता हूँ तो चल खा नाला शबन, उस वक्त आसमान भी मेरे साथ आहो नाला करता है। तो दादा वो औलिया अल्लाह के लिए अकीदा रखना कि इनसे गुनाह नहीं होते, ये अकीदा बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उनसे गुनाह का सुदूर मुमकिन है, गुनाह उनसे भी हो सकता है, लेकिन उनकी तौबा उसी दर्जे की होगी। ये बात याद रखना, दादा हमेशा इस चीज को याद रख लेना, अगर मैंने अपनी जन्नत बनाने की फिक्र नहीं की तो मैं ये समझूं कि अगला मुझे जन्नत में ले जाएगा, ये दुनिया की मेरी सबसे बड़ी भूल है। और अगर मैंने ये फिक्र नहीं की कि मुझे जहन्नम से बचना है, और मैं जहन्नम से बचना है, मैंने ये फिक्र नहीं की तो मुझे अगला जहन्नम से बचाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। और ये अल्लाह मिलकर किसी को जहन्नम से निकाल नहीं सकते जब कोई आदमी खुद ही ना चाहे, हो ही नहीं सकता। इसलिए इस बात को इसको पहले तो क्लियर कर ले आप। दादा आप कैसे कर सकते हैं कि जो आपके मातहत है, जो आपका सब ऑर्डिनेट है, वो आप पर हुक्म चला, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों इतना कमजोर अपने को बनाए? दादा साफ कह दो कि ऐसा नहीं हो सकता, इतना तो हिम्मत होनी चाहिए ना।
तो इसके बेनिफिट वो भी मैं मुझे वो एग्जामिन करने पड़ते हैं। हम कुछ
एक वाक्य सुनिए, मारूमी रहमतुल्लाह ने एक तोता फरमाते हैं कि ताजिर ने तोता पाला हुआ था, और वो जो तोता था वो बातें करता था। जब वो बातें करता था उसकी जैसे ग्राहक बहुत आते थे, तो एक मरतबा वो जो मालिक किसी काम से उठा तो तोता बैठा था, तो बिल्ली आ गई, वो उड़ा, तो जैसे उड़ा तो तेल की शीशी रखी थी वो गिर गई और मालिक की सीट पर। जब मालिक आकर बैठा तो कुछ गीला तो अब देखा तो तेल था, उसको गुस्सा आया, समझ गया तोता ही होगा और कौन हरकत करेगा, उसने तोते की खोपड़ी पर मारा, अब वो सर के बाल उड़ गए, गंजा हो गया। अब तोते ने बोलना छोड़ दिया, अब बोलना छोड़ दिया तो नतीजा क्या हुआ कि वो ग्राहकों ने आना कम कर दिया। तो मारूमी फरमाते कि एक दिन एक शख्स हजो उमरा करके आया, सरमुंडा कर गुजर रहा था, तो अब तोता बोला, अबे वो गंजे तूने भी अपने मालिक का तेल गिराया है, तभी तेरी खोपड़ी के बाल उतर गए। तो अब हम लोग जिस तरह मारू फरमाते हैं कि उस जमाने में लोग तोता वगैरह ये पाल कर करते थे कि जी हमारे पास जरा ग्राहक ज्यादा आएंगे, हमने लेडी रिसेप्शनिस्ट या सेल्स गर्ल इसलिए रखी है कि जरा ग्राहक हमारे यहाँ ज्यादा आएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि रिस्क हमारा इस औरत के हाथ में है या अल्लाह के हाथ में है? हल पैदा होता ना कि हमारे अकाइद का क्या हाल है। और बेनिफिट ज्यादा ये है, बेनिफिट एक तो यही हो कि जी सेल्स की वो ज्यादा होती है, और बेनिफिट में बेनिफिट ये भी होता है कम पैसों में मिल जाती है, नखरे कम होते हैं औरतों के और मर्दों के नखरे ज्यादा होते हैं, एक ये भी उसमें है ना, और भी शायद कोई बेनिफिट होंगे।
और फिर चार्जेस ज्यादा लेते हैं रिसेप्शनिस्ट या परचेज के अंदर, हम लोगों को या काम की जो डेलीगेशन आती है ना, जब हम जी लड़के को कोई काम सौंपते हैं जो जिम्मेदार जगहों पे, कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ पे हमको इनकी जरूरत पड़ रही है औरतों की, हम लड़के को काम देते हैं ना, उसका काम करने का तरीका ये होता है कि उसका 50% फिजूल ज्यादा टाइम वेस्ट चल रहा है, जो अमलन मैं आपको बताऊं, प्लस हम लोग इधर।
अच्छा मैं आपको अपना बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं, मैं इसलिए बैकग्राउंड बताना जरूरी समझता हूं ताकि ऑफिसर्स के माहौल। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं एबीसी कंप्यूटर भादराबाद में जो है ना प्रोग्रामिंग पढ़ाता था, क्योंकि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हूँ, वो पढ़ाता था। उसके बाद मैंने जो है वो एज ए प्रोग्रामर दीवान सलमान में किया था, पर जो है फिर मैंने अपने आईसीए में भी पढ़ना शुरू, आईसीए में भी, और उसके बाद जो है वो फिर मैं इस तरह दीवान सलमान के बाद एक गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी ईपीजेड के अंदर, वहां प्रोडक्शन में हमारा एक उसूल है कि प्रोडक्शन में कहते हैं दो चीजों के बगैर गुजारा नहीं है, एक लड़कियों के बगैर, एक गाने के बगैर, ये दो चीजें गाने और लड़की। अच्छा मैं जाता था, अल्लाह ताला ने उस जमाने में उस पर यह फर्ज किया था कि उस जमाने में मैं अपने शेख से जुड़ गया था। अच्छा मैंने अपनी लाइफ इसलिए बता दी कि मैं आपको बता दूं उस मैं किस फील्ड से मैं भी आया हूँ, इसलिए मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। अच्छा मैं उस जमाने में जब मैं वहां गया ना तो मैं हजरत के यहाँ तो मेरा ताल्लुक हो चुका था।
जब मैं हुलिया उस वक्त जो होता था यही कुर्ता शलवार में जाता था, पगड़ी पहनकर जाया करता था। मेरी जवानी थी उस वक्त बर्दाश्त ज्यादा हो जाती थी, अब नहीं बर्दाश्त होती, तो वो वक्त था। तो अब जब मैं वहां कंपनी में गया तो अब ये दो मरहले वहां पर, क्योंकि प्रोडक्शन साइट, क्योंकि उनकी जो है बेडशीट, बेड लिनन वगैरह और कर्टेन उनके जो है प्रोडक्ट थी, और मैं अकाउंट्स का था और वो प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन वाले के सामने मैंने पहले ये पॉइंट रखा, तो उसने कहा यार वर्कर्स जो हमारे गाने और औरतों के बगैर ही हमारा गुजारा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खामोश। हुआ ये कि उनके दिल में लाता ऐसी मोहब्बत डाली, जब मैं फ्लोर पर आता था ना मुझे देखते सब गाने बंद करते थे, ये उनके दिल में। अच्छा नमाज मेरे मैं पढ़ाता था, नमाज के बाद मैंने बयान शुरू किया। अल्लाह की शान देखिए, मैं आप प्रोडक्शन का एक उसूल है कि प्रोडक्शन में आप लोग वेस्टेज रखते ना, या जो भी जो है क्या नाम है जो कंसाइनमेंट भेजते हैं तो उसमें जीरो डिफेक्ट नहीं होती है, है ना। कितना 5% कोई 10% ऐसे तो लगता ही है। और हमारे भी यही होता था कि 10% जो है अहमद टब्बा है ना, अब तो उसका इंतकाल हो गया ना, अहमद टब्बा के साथ था मैं, उसकी जो है होम फर्निशिंग थी वहां पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, ये मैं 90s की बात बता रहा हूं। तो अब वो क्या डिफेक्ट क्या है, तो यकीन जाने खैर मैं बयान करता रहा, मैं मेरी इज्जत जैसे करते थे कि मैं घुसता था वो गाने बंद कर देते थे, मैं कुछ नहीं कहता था, तो बयान शुरू किया गाने बंद हुए। अब गाने बंद हुए तो अच्छा लड़कियां पहले निकालना, वो बात हुई उसकी। तो अब होता ये था कि मैंने कहा देखो होता ही है कि जो लड़के जो हरकतें करते हैं ना ये लड़कियों के चक्कर में ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, अब वो चक्करबाजी चली, लड़कियों को इसकी फिक्र ज्यादा नहीं होती क्योंकि उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक फितरी तौर पे झिझक रखती है, और मर्द जो है ना इसको ज्यादा मस्ती सूझती है, ये मर्द को जो है ना मस्ती ज्यादा सूझती है, क्योंकि एक तो ये मर्दानगी भी है और इसका एक अल्लाह ताला ने नेचुरल ऐसा बनाया कि इसकी मस्ती का वो ज्यादा है, और ये बेफिक्र होकर खुशन जवानी का जमाना हो। हुआ ये कि फिर उनसे मैंने बात की तो खैर लड़कियां हमने निकाली, लड़कियों को फारिग किया, उसका नतीजा ये हुआ कि काम में थोड़ा सा इजाफा हुआ, क्योंकि अब लड़की आई नहीं लगा। हमारे एक दोस्त है तो कहने लगे यार ये लड़के जो है काम नहीं करते और जिसको देखो ऐसे मुंह उठा के चलाता है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम रिसेप्शन पे चाहे काली कलूटी है लड़की बिठा दो, ये मजाक की बात थी उससे, तो तुम एक काली कलूटी लड़की बिठा दो, अगले दिन देखना कोई टाई लगा के आ रहा होगा, सर पे तेल कहेंगी, ब्रिल क्रीमें लग रही होंगी, और चाहे काली कलूटी फौरन सबका हौलिया बदल जाएगा और सब जो है वो टाइम से पहले आने की कोशिश करेंगे, और फिर आकर फिर पहले तो आएंगे ऐसे जैसे फिट्टे मुंह की तरह घुसे चले आ रहे हैं, और अब आएंगे सबके मुस्कुराहट होगी, सब मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल होंगे, बड़े फर्क पड़ता है। अच्छा ये हुआ। दूसरा काम जो गाने का मसला था उससे फिर भी जान नहीं छूट रही थी, मेरी तो इज्जत करते थे, फिर अल्लाह की शान बयानात करते करते सर लोगों ने बंद किया। उसी जमाने रमजान शरीफ आ गया सर, अब रमजान शरीफ आया, अब मैंने बयान शुरू किया, खैर उन्होंने रमजान शरीफ में गाने बंद कर दिए। अब रमजान शरीफ में गाने बंद किए तो यकीन जानो उस रमजान शरीफ में जो कंसाइनमेंट गई, पहले रमजान शरीफ में भी गाने बंद नहीं होते थे, ये तो मालिक भी इसमें बड़ा मजबूर है, कहता जी ये वर्कर मानते नहीं है, तो उस रमजान शरीफ में जो कंसाइनमेंट गई यकीन जाने जो हमारे यहाँ जो शिकायतें आया करती थी वो जो 10% से भी ज्यादा होती थी वो बिल्कुल हाफ हो गई, बिल्कुल हाफ हो गई उसी में। फिर उसके बाद मैं खुद उस कंपनी में रहा हूं, उसके बाद वो 0.5% डिफेक्ट पर आ गई थी वो कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कितनी ऐसी कंसाइनमेंट के जिसमें वो ही नहीं। तो बात ये है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया के बेनिफिट तो अपनी जगह है, अल्लाह ताला का फर्ज का इरशाद और फरमान है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके कामों को आसान फरमाते हैं, ये बात है। तो असल चीज जो हमारा जो असल जो चीज है ना वो ये नहीं है कि जी लड़की होगी मर्द होगा फना होगा ये होगा, ये चीज नहीं है। असल जो हमारा काम जहां से बनेगा हमने उस फैक्टर को पकड़ना है, उस फैक्टर को हमने देखना है, उसको मजबूत करें काम है। बाकी रही बात ये कि जो लड़कों का है तो उसके लिए ट्रेनिंग और तरबियत इसी लिए तो है कि ये ISO 9000 का मैं ऑडिटर भी हूँ और मैंने कंसल्टेंसी भी की है उसकी। फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी मुझे कि हजरत से ताल्लुक हुआ तो उसके बाद मैंने इल्म भी पढ़ना शुरू किया, हजरत पिछले साल मेरा दौरा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ये मैंने उसके बाद शुरू किया ये काम, और अल्लाह का एक मस्जिद भी है, खानका भी है, और साथ अपना खुशबू का मेरा जो छोटा मोटा काम है वो भी है। लेकिन मैं इसलिए मैंने बताया कि मैं भी उसी फील्ड से निकल के आया हूँ, ये आप वाली फील्ड से, मैं भी उसी से आया हूँ, और वो दीवान सलमान के अरूज का टाइम था और मैं वहां की सेल्स में था। यकीन जाने उस जमाने में आलम ये था, चूंकि फाइबर का बहुत, ये 90s की बात होता है, 93-94 में, क्योंकि फाइबर एक बहुत सेंसिटिव होता, क्योंकि हमारे यहाँ थी नहीं, तो ये जो बड़े बड़े ये जो शाहिद नदीर वगैरह और ये जावेद लगारी जो हैं, फारूक लगारी के जो भाई है जावेद लगारी और जितने मिलियनर ये जो कोहिनूर वाले मिन्नत करते थे मुझे फोन करके मेहरबानी करके एक ट्रक देखो सर बड़ी मेहरबानी होगी एक एक यकीन जाने इनके इनकी इतनी मिन्नतें करते थे मैं कहता था नहीं भाई है नहीं हमारे पास हमारी प्रोडक्शन और उसको वो तो फिर चेयरमैन ऐसा भी होता था कि चेयरमैन को फोन करते थे जियाउर रहमान फारूकी को चेयरमैन मुझे कहता था ट्रक दे दो उसको मैं कहता था नहीं सर उसकी तो पेमेंट मैं ट्रक नहीं दूंगा हमारा तो सारा प्रोडक्शन आउट है कहता था भाई मेहरबानी करके वो मेरा दोस्त है उसको एक ट्रक अच्छा सर आप कह रहे तो दे दे तो यानी ऐसा आलम था कि चेयरमैन अगर फैक्ट्री मैनेजर को बोल देना कि उसको ट्रक दे दो और मैं मना कर दूं तो मेरी मानेगा उसकी नहीं मानेगा ऐसा अल्लाह ताला ने वो एक वो आलम भी दिया था इसलिए उसको बता दिया कि मैं भी जरा उस फील्ड की और उस दुनिया की खबर रखता हूँ इसलिए समझा दिया मैं वो क्लासिकल मुल्ला नहीं हूँ ये बता दिया कि जिसने ऐसा नहीं किया देखा ही नहीं है कुछ कि साहब ये कहे कि साहब हम वो नहीं मैंने मैंने भी एक फील्ड है मैं कॉमर्स कॉलेज में भी पढ़ा नेशनल कॉलेज में पढ़ा साहब दुनिया देखी सब बोलता है अल्लाह ताला ने अपने कर्म से शेख के पास डाल दिया लेकिन उस उम्र में डाला कि जिस वक्त वो टर्निंग प्वाइंट था बहुत खतरनाक यानी 20-21 साल की मेरी उम्र थी उस वक्त जज्बात और क्या आलम होता है क्या टाइम हो गया 35 हो गई चलो वुज़ू करना है बाकी इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यू।